پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک گٹارسٹ, ایک گلوکار, نغمہ نگار اور کلن کالج آف انجینئرنگ یونیورسٹی ہیوسٹن میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یا پی ایس اے کے صدر اور میکینیکل انجینئرنگ کے ایک انٹرنیشنل انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ عریب خان. کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والے عریب خان اپنی تعلیم اور پی ایس اے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی ایک کمپنی جیومیٹرس سے بھی جز وقتی وابستگی رکھتے ہیں, اور ان سب کے ساتھ ساتھ عریب خان موسیقی کے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور گلوکاری, نغمہ نگاری, ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو پروڈکشن کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں. ہمارے مہمان کی تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہمارے مہمان عریب خان موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم عریب خان.
جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ایسوسی ایشن کے بارے میں سوال کریں, ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کا مختصر تعارف کرا دیں, خاص طور پر اس کے انجینئرنگ کالج کا جس میں آپ میکینیکل انجینئرنگ کے ایک انٹرنیشنل انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہیں.
کالج جو ہے انجینئرنگ کالج یہاں کا, اس کا نام ہے کلن کالج, انجینئرنگ کالج آف انجینئرنگ, اینڈ بہت اچھا انجینئرنگ کا ان کا پروگرام ہے اور اٹس پریٹی فیمس اور ہیوسٹن کے اندر اسپیشلی انجینئرنگ کے حساب سے ان کا, کیونکہ ہیوسٹن میں بہت لائک کمپنیز ہیں اور مارکیٹ ہے انجینئرنگ سائٹ کی, بلڈنگ کمپنیز ہیں, تو بہت اچھا ایک ان کا پروگرام ہے. اور دوسری بات ان کا یہ کہ بہت ڈائیورس یونیورسٹی ہے.
کتنے شعبے ہیں اس میں, کیا کیا پڑھایا جاتا ہے
اس یونیورسٹی میں؟ آلموسٹ سب کچھ ہے, صرف جو آئی تھنک نہیں ہے وہ میڈیکل اسکول اینڈ والا, جو بڑا میڈیکل اسکول ہوتا ہے پراپر وہ نہیں ہے, بٹ اس کی بھی انڈر گریڈ کے لیے بایو میڈیکل اور اس ٹائپ کی ڈگریز ہیں. اینڈ دین بزنس اسکول ہمارا جو ہے اس کا بار بزنس اسکول, وہ بھی بہت اچھا ابھی, بلکہ رینکنگز اس کی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, تو وہ بھی ایک بزنس اسکول بہت اچھا. اور بزنس اسکول میں سارے انڈر گریڈ کے اکاؤنٹنگ, فائنانس, مارکیٹنگ, ایم آئی ایس میجرس کی انڈر گریڈ بھی اویلیبل ہے اور کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے, اور ماسٹرز بھی, اور انجینئرنگ میں بھی ہر طرح کے مکینیکل ہو یا کیمیکل ہو یا الیکٹرانکس ہو یا بایو میڈیکل انجینئرنگ, تو ہر طرح کی ہیں. اور پلس اگر انجینئرنگ اور بزنس سے باہر جائیں تو سوشیولوجی اور اس ٹائپ کے بھی سارے میجرس ہیں, تو یہ بہت بہت بڑی یونیورسٹی ہے.
لیکن اس میں داخلے کا پروسیس کیا ہے اگر پاکستان سے کوئی اپلائی کرنا چاہے تو؟
داخلے کا پروسیس یہ ہے کہ میں نے جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے او لیولز اور اے لیولز کیا تھا, جو آج کل آلموسٹ آئی تھنک سارے لوگ کرتے ہیں, ورنہ انٹر ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں اے لیولز, اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آپ ایس اے ٹی ہوتا ہے, ایک ایس اے ٹی ایگزام ہوتا ہے, وہ دینا پڑتا ہے آپ کو. پھر ان کا آن لائن پروسیس ہی ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سرچ کریں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ گوگل پہ, یو ایچ یا कोई भी यूनिवर्सिटी जो अभी आपको जाना हो तो उस पर आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन, तो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए. तो जो कि चीज़ें हैं जो कि SAT जैसे मैंने बताया, आपके ऑफकोर्स ग्रेड्स वो सब कुछ भेजने पड़ते हैं जो अभी आपके ओ लेवल्स में आए थे और जो ए लेवल्स में हैं, और फिर उनकी एक टेक्सस ह्यूस्टन क्योंकि टेक्सस के अंदर है तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन पूरी सबमिट करनी होती है. बट पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है तो आप बैठ के घर से बैठ के आप कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर लेते हैं ऑनलाइन. उनकी फीस होती है, कुछ एप्लीकेशन फीस होती है, और वो करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी से रिस्पांस मिलता है बाद में. तो फिर आपको आगे फिर और स्टेप्स हैं वीजा के, अगर आपको एडमिशन मिल गया या नहीं मिला जो भी है.
तो स्कॉलरशिप्स के भी हैं कुछ मौके के पहले से उन्हें पता लग जाए कि हमें उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है पाकिस्तान.
हाँ जी, अभी मैं एक्चुअली जब आया था पाकिस्तान से तो इधर मेरी इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली उस वक्त इतना स्कॉलरशिप्स का नहीं था अवेलेबिलिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो वो होता था ये था कि आप आके यहाँ पे फिर आप एक साल पढ़ो लाइक एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करो स्कॉलरशिप्स के लिए. लेकिन अब से पिछले दो साल से इनने ऐसा प्रोसेस शुरू कर दिया है कि आपको उधर ही बैठे लाइक आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके ग्रेड्स के हिसाब से और आपके को-करिकुलर एक्टिविटीज और सब चीजों को देख के वो आपको उसी वक्त बता देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप क्या मिल रही है. ये कुछ दो तीन दोस्त आए हैं और पाकिस्तान से कराची से बल्कि आए हैं बच्चे जो स्कॉलरशिप पे आए हैं पहले से ही.
अच्छा, वरना आमतौर पर पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से जो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्कॉलरशिप्स के मौके ज़रा यूनिवर्सिटियों में कम ही हासिल होते हैं और काफ़ी महंगी पड़ती है ये एजुकेशन. लेकिन अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो जाहिर है कि बहुत फ़ायदा होता है.
हाँ जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप और तो मैं इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि इन्हें अब शुरू कर दिया है. एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि अब स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं.
अच्छा.
और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो अगर आप एक साल का एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आपको आके मेहनत भी करनी पड़ती है लेकिन आप एक साल के बाद आप यहाँ पे अगर अच्छे अपने ग्रेड रखें और सब कुछ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको मिल जाती है.
अच्छा.
एक साल के बाद
तो वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहें इस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग खासतौर पर, तो उन्हें ऑनलाइन डिग्री हासिल करने की भी कोई सहूलत देती है ये यूनिवर्सिटी?
आई थिंक ऑनलाइन नहीं हो सकता. आई थिंक पूरी डिग्री ऑनलाइन इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है. क्लासेस हैं ऑनलाइन, अभी यहाँ पे मैं सेमेस्टर को देख ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक रूल होता है कि अगर आपको एडमिशन मिलता है, जैसे अगर आप UFH में एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अलाउड नहीं होती एक से ज्यादा लेना. वरना अगर UFH नहीं तो और हैं यूनिवर्सिटीज जो ऑनलाइन पूरी आपको डिग्री देती हैं.
अच्छा, तो ये भी एक सहूलत है जो अब आज के दौर में उन स्टूडेंट्स को जो कि अमेरिका आकर या बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन भी अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी डिग्री ले सकते हैं, या कम से कम अपनी सलाहियतों को और अपनी जो एजुकेशन है उसका दायरा उसको वसी कर सकते हैं. तो अब बात करेंगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की जिसके आप सदर हैं. ये कब कायम हुई और क्या पाकिस्तान के अलावा यूनिवर्सिटी में दूसरे मुल्कों के तालिब इल्मों की भी एसोसिएशन हैं और उन्हें कैसे तश्कील दिया जाता है?
जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन वैसे तो पूरे अमेरिका के अंदर हर ऑलमोस्ट मुझे जितना पता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर कायम है, लेकिन ह्यूस्टन के अंदर ये पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 52 ईयर्स से है. तो 1965 के अंदर ये बनी थी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, और बल्कि पिछले साल हम लोगों की 50th एनिवर्सरी थी, तो हाँ 52 ईयर्स हो जाएंगे इस साल. तो ये ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ये मदर ऑर्गेनाइजेशन हैं टू अ लॉट ऑफ अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन जो अभी ह्यूस्टन के अंदर हैं. तो हालांकि ये छोटी अब स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑफकोर्स वो जो स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हुए जो बड़े हुए तो उन्हीं लोगों ने फिर PSA वाले लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई हुई हैं. तो ह्यूस्टन स्पेशली मैं समझूंगा कि यहाँ पे बहुत हमारे ह्यूस्टन के अंदर क्योंकि पाकिस्तानी हैं और हमारे मुल्क के लोग हैं तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लाइक बहुत बड़े स्केल पे ये एसोसिएशन चल रही है.
तो जो दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने मुल्कों की एसोसिएशंस बनाते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन?
हाँ जी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस जितना मेरा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी बहुत इनकरेज करती है हमारी कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और आप ऐसे इवेंट्स करें और ऐसा एक माहौल बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स को जो बाहर से आ रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो अपना कंफर्टेबल फील कर सकें. तो है बिल्कुल हर जगह की ऑलमोस्ट हर हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन है. इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन भी है और फिलिपिनो स्टूडेंट एसोसिएशन भी है, इस तरह सारी उनकी हैं. बट हर किसी का अपना स्केल है कि जिनके यहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके थोड़ा बड़ी है. हम लोग एस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आती है.
तो आप ये कह रहे हैं कि इसका बुनियादी मकसद सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को प्रमोट करना ही है, या इसे अपने मुल्क के तालिबे इल्मों के मसाइल को हल करने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है?
बिल्कुल, ये दोनों दोनों चीजें इसमें आती हैं. कल्चर दिखाएं वो ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात है, दूसरी लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने जो ये एक सेटअप किया हुआ है उसमें जितने पाकिस्तानी होते हैं उनकी हेल्प किसी ना किसी तरह करते रहते हैं. अब जैसे नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो वो हमें मैसेज करते हैं, हमें आते हैं, हमारे फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि हम आ रहे हैं, अगर उन्हें क्वेश्चन हैं जिस तरह कोई सवाल है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हिसाब से हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए. इस तरह ऑफकोर्स हम लोग पाकिस्तानियों की हेल्प भी है प्लस पाकिस्तान का यहाँ पे कल्चर भी हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं.
अच्छा, तो किस किस अंदाज में आप पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं? और फेसबुक पर हमारे एक यासिर अली हैं, उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या पाकिस्तानी कल्चर का भी कोई एक दिन होता है. और हयात राही ने फेसबुक पर आपके लिए सवाल पोस्ट किया था कि पाकिस्तान में चार अलग अलग कल्चर हैं, आप कौन सा कल्चर मुतारिफ कराते हैं?
अच्छा, पाकिस्तान का हम लोग यहाँ पे इवेंट्स हर तरह के करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि मैंने कहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट इवेंट्स होते हैं, जिस तरह जिसके अंदर बाहर कंपनीज के और जो यहाँ पे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग आते हैं हमारे इवेंट्स पे, या हम उनके इवेंट्स पे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, तो एक नेटवर्क क्रिएट कराते हैं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का. इस तरह के इवेंट्स होते हैं. फिर उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए आए हैं उनको एक घर की फीलिंग देने के लिए अब हमारे पाकिस्तानी हर हॉलीडे के इवेंट्स होते हैं. तो 14 अगस्त का इवेंट होगा, फिर ईद डिनर का इवेंट होगा. अब हमारा ईद डिनर बहुत एक बड़ा इवेंट होता है जिसपे पिछले साल हमारे तकरीबन 200-250 स्टूडेंट्स थे उस इवेंट पे. तो वो ईद डिनर होता है जिसपे ऑफकोर्स फिर पाकिस्तानी खाना मिलता है. बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको अब खाने से घर के खाने नहीं मिलते तो वो भी होता है. तो ये सब कुछ इसमें, ये तो चले आपके इवेंट्स हो गए जो स्टूडेंट्स के लिए हैं. कल्चर के हिसाब से हमारे एक दिन होता है स्प्रेड द ग्रीन, एक इवेंट होता है हर सेमेस्टर होता है ऑलमोस्ट. स्प्रेड द ग्रीन के अंदर ये होता है कि हम लोग पाकिस्तान का बस उस पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे उस वक्त हम लोग पाकिस्तानी कल्चर स्प्रेड कर रहे होते हैं. तो हमारा जो बूथ होता है उस पर हम लोगों ने हर तरह की इंफॉर्मेशन रखी होंगी, बल्कि आप फेसबुक पे अगर पिक्चर्स देखें तो उस सवाल का भी जवाब के कल्चर कौन सा हम लोग ज्यादा करते हैं, तो वो चारों हर तरह के सूबे के हमारे जो कल्चर्स हैं वो उनकी पिक्चर्स होंगी उनमें. तो लोगों को बताते हैं कि यू नो दिस इज ये हमारा कल्चर्स हैं ये डिफरेंट जो है. और उसके अलावा सबसे बड़ा जो एक हमारा प्लेटफॉर्म होता है और जो एक इवेंट होता है वो होता है पीएसए शो, जिसपे हम लोग आगे और भी बात करेंगे. लेकिन उस शो के अंदर अगर मैं उनका सवाल का जवाब दूं तो पिछले साल हम लोग के शो के अंदर, उस शो के अंदर बेसिकली मल्टी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, मॉडलिंग, हम कपड़े भी दिखाते हैं पाकिस्तानी, और क्या कहते हैं एक्टिंग होती है. तो जो पिछले साल का शो था, पिछले साल का शो था, उसमें हम लोगों ने सारे चारों कल्चर के डांसेस दिखाए थे, चारों कल्चर के कपड़े दिखाए थे, चारों कल्चर्स के एक्टिंग के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट किया था. तो हर शो के अंदर हम लोग किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का कोई ना कोई एक कल्चर दिखाते हैं. पिछले साल हम लोगों ने जिस तरह बस हमारा मेन वो गोल ही ये था कि हमने चारों कल्चर दिखाने हैं, तो वो इस तरह डेफिनेटली हम लोग करते रहते हैं. अब फिर हम लोगों का टर्किश फेस्टिवल होता है, एक टर्किश फेस्टिवल यहाँ ह्यूस्टन में होता है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, तो उस पर फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस पर पिछले साल हम लोगों ने मेरी टीम के साथ हम लोगों ने किया था, तो उस पर चारों सूबों के हम लोगों ने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देनी थी. तो उसमें डिफरेंट कपड़े चेंज किए थे हम लोगों ने, सिंधी एंड देन बलोची, तो इस तरह उधर भी किया था. तो वो इस तरह जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हम लोग
और वो शो जिसे आपकी क्यादत में तरतीब दिया गया था अभी हाल ही में जो हुआ है कबूल है, तो उसमें आपने क्या पेश किया था जिसकी मेजबानी भी आप खुद कर रहे थे और होस्ट भी आप खुद कर रहे थे शो में?
ये शो था पीएसए शो 2016 कबूल है ? तो दिस शो, ये शो बहुत बेसिकली हमारे हर साल एक ऐसा बड़ा शो होता है जिसमें इस शो के अंदर तकरीबन हमारी अटेंडेंस होती है 1000 से 1200 लोग तक की. एंड इस शो को कम्प्लीटली स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ स्टूडेंट्स मिलके हम लोग करते हैं. पूरा तैयारियां करते हैं, जो लॉजिस्टिक्स से लेके एक्टिंग, जो भी उनका मटेरियल से लेके सब कुछ स्टूडेंट्स मिलके करते हैं. तो एक तो सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतना बड़ा स्केल पे इवेंट करने का. बेसिकली मैंने हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम लोग थोड़ा एक डिफरेंट टच लाएं शोज में. तो बजाय कि वो सिर्फ सिंगिंग डांसिंग और फैशन शो और जो एक्टिंग है वो रैंडम यू नो स्किट्स हों, तो हम लोग क्यों ना उन सबको इनकॉर्पोरेट करके एक पूरी थीम बना लें. तो ये आइडिया फिर हम लोगों ने शुरू किया इस पर डेवलप करना. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि और अब हर तरह के कल्चर, पिछले से पिछले साल हम लोग चारों कल्चर दिखा चुके थे, उसके फिर पिछले साल हम लोग उसके एक स्टोरी हम लोगों ने वैसे पकड़ ली थी पाकिस्तान की. तो इस तरफ हम लोगों ने कहा कि हम लोग शादी का कल्चर दिखाते हैं हमारा जो पाकिस्तान का होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक वैसी फैंटेसी है, मतलब एक बहुत एक्साइटेड होते हैं गोरे हमारे जो यहाँ के अमेरिकन हैं एंड ऑल दीज अदर पीपल, देर एक्साइटेड टू सी हमारी वेडिंग्स के सारे जो होते हैं इवेंट्स. तो हमने कहा कि उसको लेके हम लोग क्यों ना पूरा एक शो करें जिसमें शुरू से लेके एंड तक एक पूरी स्टोरी हो, जिसमें स्टोरी हो और स्टोरी के अंदर ही अंदर हम लोग सारे एक्टिंग भी दिखाते हैं, हम लोग डांसिंग भी दिखाते हैं और हम लोग फैशन शो भी दिखाते हैं. तो बड़ा मजे का एक शो हुआ था हमारा.
और ये कितने घंटे का था? तीन घंटे?
ये तकरीबन जी थ्री एंड हाफ घंटे चलता है.
अच्छा, तो इस वक्त हम इस शो से थोड़ा सा एक झलक हमने रिकॉर्ड की है, वो अपने सुनने वालों तक पहुँचाते हैं. इसके बाद थोड़ी सी बात इसके बारे में और करेंगे.
जरूर.
Something for you guys. So I'm currently working on new music, and there's a song that I recently.
Ninth को इसी University of Houston Kiva Room में उर्दू बैठक का एक open mic event है. आप सबको मैं उसमें invite कर रहा हूँ.
शेखी के डब्बा, शेखी के अब्बा
क्या कर रहा है
आपको? शब्बो का ड्रामा, शब्बो की अम्मा, अब शब्बो की अम्मा हक महर 6,000 बिल डेबिट कार्ड अपने निकाह में कबूल है?
कबूल है.
जी, ये थी झलक उस शो की जिसे ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में सालाना सकाफती शो के तौर पर पेश किया गया पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से, जिसकी आप मेज़बानी भी कर रहे थे. तो कुछ बताइए कि फिर इसका कितने लोग इसमें देखने आए थे? मैंने वो तस्वीरें पोस्ट की हैं फेसबुक पर जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हाजरीन मौजूद थे.
जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि इस हमारे शो में हमेशा एक तकरीबन 1,000 से लेके 1,200 या कभी 900 के अंदर नंबर, इतने लोग होते हैं हमेशा. तो इस साल भी हमारे बहुत अच्छी अटेंडेंस थी और ऑफ कोर्स कम्युनिटी को, बच्चों को स्पेशली सपोर्ट करने आते हैं. और मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि ह्यूस्टन के अंदर ये अकेला एक प्लेटफॉर्म हम लोग सेट करते हैं जिसमें नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करने की और बच्चों को बेसिकली अपना एक पैशन रिप्रेजेंट करने की मौका मिलता है.
और इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी आपको मिले, मैं देख रही थी. और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो लिंक है इस शो का, हम अपने प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देंगे बाद में, ताकि लोग चाहें तो इस पूरे शो को देख भी सकते हैं. तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे थे, वो उनका कैसे?
जी बिल्कुल, हम लोगों को पीएसए को रिकग्निशन मिलती है मेयर के ऑफिस से, ह्यूस्टन मेयर के ऑफिस से, उनके ऑफिस से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिनके हमें सर्टिफिकेट मिला था, फिर हमारे कांग्रेसमैन ऑफिस से भी हमारे एक आते हैं, उनके उनसे भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है, पीएसए को रिकग्निशन मिलती है रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ह्यूस्टन. और उसके अलावा फिर हमारी यहाँ पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कराची सिस्टर सिटी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रेसिडेंट बल्कि पिछले साल जो सईद शेख थे, उनने भी हमें एक अवार्ड दिया था, क्योंकि यही इसी वजह से कि यू नो हम लोग पूरे साल उनकी भी हेल्प करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में उसके सर्टिफिकेट मिले थे हमें.
ये वाकई एक बड़ी बात है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं अमरीका में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने इदारों में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें, पाकिस्तान के बारे में मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ. ये मिशन जो है आप अपनी तालीम के साथ साथ जारी रखे हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया.
मैं एक और बात ऐड करूँगा कि इस हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 400 से 500 ऑर्गेनाइजेशन हैं, और पिछले साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दो अवार्ड्स, जो सालाना एक अवार्ड सेरेमनी होती है उसके अंदर दो अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेशन मिली थी, जो कि बहुत बड़ी बात है. और वो अवार्ड एक था कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक था कि बेस्ट शो जो नॉन फी फंडेड, मतलब जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फी कोई हम लोगों को हेल्प, मतलब फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिली थी, लेकिन द बेस्ट शोज.
तो उसमें पूरे यूनिवर्सिटी के लोग स्टूडेंट्स आते हैं देखने के लिए कि बाहर से भी आते हैं इस शो को?
हमारे शो में जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी प्लस पूरा ओपन होता है और टिकट्स होती हैं उसकी.
अच्छा.
तो इसी तरह पूरे पूरे ह्यूस्टन से लोग आते हैं.
अच्छा वाह, तो बेहद शुक्रिया आरिफ खान. हमारी गुफ्तगू भी जारी है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम जिक्र करेंगे आपकी अपनी गुलकारी का और आप जो आपका पैशन है म्यूजिक का के बारे में बात करेंगे.
जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पांव चांद आएगा, वो loving you.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं एक गिटारिस्ट, एक गुलुकार, नगमा निगार और कलन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन या पीएसए के सदर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्टूडेंट अरीफ खान. कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरीफ खान अपनी तालीम और पीएसए की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ इंजीनियरिंग की एक कंपनी जियोमेट्रिक से भी जुजवक्ती वाबस्तगी रखते हैं, और इन सब के साथ साथ अरीफ खान मौसीकी के अपने शौक की तकमील के लिए भी कोशा रहते हैं और गुलकारी, नगमा निगारी, रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो प्रोडक्शन के शोबे में भी अपनी सलाहियतों को आजमा रहे हैं. हमारे मेहमान की तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. जी अरीफ खान, बहुत से दूसरे बड़े गुलकारों की तरह آپ بھی اپنی گلوکاری کے شوق کی تکمیل کر رہے ہیں, دوسرے گلوکاروں کے, دوسرے بڑے گلوکاروں کے گائے ہوئے نغموں کو گا کر, اور جس کا آپ آغاز کر چکے ہیں, لیکن اس میں آپ نے ایک نیا ٹچ یہ دیا ہے کہ آپ اس کو نہ صرف یہ کہ گاتے ہیں بلکہ اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اس کی مکسنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور انگریزی سانگس بھی گاتے ہیں اور اردو بھی گاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ خود بھی لکھتے ہیں اور خود بھی اپنے نغمے لکھتے ہیں اور گاتے ہیں اور ان کی ویڈیو پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اس قدر جو موسیقی کا شوق ہے یہ کب سے ہوا, اور کب آپ نے یہ شروع کیا کہ میں اس کی پروڈکشن بھی کروں اور اپنی ویڈیوز بنا کر فیس بک پیجز پر تو کم از کم لگاؤں.
جی, میوزک کا میں آئی تھنک میں سب جب سے چھوٹا سا تھا تب سے ہی شوق رہا ہے. میں کہوں گا کہ یہ میری امی اور ابو ان سب کی سپورٹ تھی کہ ان نے مجھے مطلب یو نو کرنے بھی دیا ساتھ ساتھ, اور ان نے کہا کہ یو نو انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر ایک چلائیا تھا. بلکہ ایک میں سب کو سٹوری بتاتا ہوں کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں وہ جو بچوں کا پیانو ہوتا ہے چھوٹا سا کیک والا وہ پڑا ہوا تھا, تو وہ ماما نے مجھے دیکھا کہ میں بیٹھا اس پہ ہیپی برتھ ڈے کا ٹیون خود بجا رہا تھا. تو وہ اس میں نے کہیں سے کچھ سیکھا نہیں تھا, لیکن ماما نے دیکھا کہ خود اس نے سن کے بجا دیا. تو اس سے ماما کو پتا چلا کہ اس کے اندر اس کو شوق بھی ہے اور پلس اس نے اتنا ہے بھی اس کے اندر. تو اس طرح پہ ماما نے مجھے اسٹیج پہ چڑھا دیتی تھی رینڈم جگہوں پہ کہ چلو گاؤ. تو میوزک کا شوق اس طرح ماما نے بھی ساتھ بڑھایا, اور پلس مجھے آف کورس اپنا ایک شوق تھا. یہ اب آئی ڈونٹ نو کس چیز کی وجہ سے, میری کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے جس سے شروع ہوا, لیکن بس ایک پیدائشی شوق تھا.
اچھا, تو پھر کب سے آپ نے یہاں یونیورسٹی میں کب یہاں آ کر پھر آپ نے یہ سارا جو
نہیں بالکل میں نے آئی وڈ سے کہ میں نے پراپرلی جو ایک تھوڑا اپنا سوچا تھا کہ میں اب سے لائک یو نو آن لائن انٹرنیٹ پہ لگانا شروع کرتا ہوں, وہ میں نے جب میں آئی تھنک ایٹھ کلاس یا نائنتھ کلاس کے اندر تھا. تو تب میرے ساتھ ایک اور دوست تھا جس کے ساتھ میں نے شروع کیا, اور ہم لوگ اپنی لائک اسکول کے اندر جو ایونٹس ہوتے تھے یا کوئی فیئر ویل ہوتی تھی جس طرح, تو اس میں پرفارم کرتے تھے. تو تب سے میں نے شروع کیا تھا, اور پھر میں نے کیا کہتے ہیں
ایک بینڈ بنایا تھا آپ نے.
ہاں جی, پھر ہم لوگوں نے بینڈ بنایا, بینڈ بنا کے ہم لوگوں نے کراچی کے اندر ہم لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ پرفارم کیا. اس طرح کمپٹیشن ہوتے تھے, بیٹل آف دی بینڈ. لیکن اب آف کورس پڑھائی کے لیے مجھے امریکہ آنے لگ گیا پڑھا, تو پیچھے چھوڑ کے آنا پڑا سب کچھ.
اچھا, تو کیسے آپ نے کوئی اسٹوڈیو بنایا, کہاں کرتے ہیں ریکارڈنگ اور یہ سہولتیں آپ کو کہاں سے؟
نہیں بالکل, مجھے یہی سب سے مشکل رہی ہے میرے لیے ہمیشہ, کیونکہ آئی کم فرام اے فیملی جو کہ مطلب ہم لوگ ماما نے آف کورس مجھے جتنا ہم لوگ کر سکتے تھے کر کیا, لیکن مجھے جیسے کبھی پیانو ایک مجھے چاہیے ہوتا تھا بڑے والا کی بورڈ, تو وہ مجھے نہیں لے سکا میں ہمیں جب میں چھوٹا ہوتا تھا. تو یہ ایک ہمیشہ اسٹرگل تھی کہ مجھے نا جو چیزیں ہوتی تھیں انہیں سے آئی ہیڈ ٹو ڈو کچھ نہ کچھ جو بھی کر سکتا تھا. تو میں نے اسٹوڈیو کوئی نہیں گھر پہ میں نے جب یہاں امریکہ آیا تو پھر میں نے یہاں پہ چیزیں خریدی ریکارڈنگ کی, جو ہوم اسٹوڈیو ہوم ریکارڈنگ ہوتی ہیں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, مائک لے لیا کنیکشن کے لیے اور اس ٹائپ کی چیزیں لے کے. تو میں گھر پہ ہی بالکل خود ہی شروع کیا میں نے, اور گھر پہ میں ریکارڈ کرتا تھا گانے, اور اب پھر میں نے فیس بک پہ لگانا شروع کیا.
نہیں لیکن یہ ویڈیو کیسے بنا لیتے ہیں اپنی
ویڈیو؟ بلکہ یو وڈ بی سرپرائز, میں نے شروع کی میری جو پیج پہ ویڈیوز لگی ہیں وہ میں نے اپنے موبائل سے بنا کے اور ان کو ایسے ایڈٹ کیا تھا کہ وہ لگے نہ کہ موبائل ٹائپ ہے, تو وہ بہت اچھی بنی تھی. وہی مسئلہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ مجھے خود کرنا ہے اب جو بھی ہے. تو اب میں اگر ویڈیو کے لیے کسی کا ویٹ کروں گا تو پھر وہ گانے بن جائیں گے, ویڈیو نہیں بنے گی. تو گانے کا میوزک کے لیے کسی کا ویٹ کروں گا تو پھر آف کورس ویسے رہ جاتا ہے مطلب. اس لیے میں نے جو چیزیں وہ میری ہمیشہ سے رہی عادت کہ مطلب اپنے لیے جو کر چاہیے تو وہ کرو, میک اٹ ہیپن.
تو یہاں پر تو بہت سارے بینڈز موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش نہیں کی کہ اپنا ٹیلنٹ؟
بالکل ہے, بینڈز سے زیادہ یہاں پہ سنگرز بہت ہیں, سنگرز یہاں پہ بہت ہیں, اور میں نے کولیبریٹ بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میرا ایک دوست ہے فائز یمین, اور وہ بہت اچھا, جس طرح میں کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہو, تو وہ ڈیفینیٹلی ہی از ون آف دوز. تو ہم دونوں مل کے بلکہ ویڈیوز بھی کرتے ہیں, وہ ویڈیو پروڈکشن پروڈیوسر بہت اچھا ہے. تو ہم دونوں مل کے اس طرح ویڈیوز کرتے رہتے ہیں, تو کولیبریشن. بٹ پھر میں نے جب میں کراچی سے ہی میں نے تھوڑا لائک اپنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ میں اب مجھے میں نے سوچا کہ میں میوزک کا اگر بات آئے تو میں کہیں پہ لیگ نہیں کلیب کرتا ہوں, مطلب آف کورس آئی ایم ناٹ پرفیکٹ 100%, بٹ میں آئی کین پلے دا کی بورڈ مائی سیلف, میں گٹار خود پلے کر سکتا ہوں, پروڈکشن میوزک کی میں بنا سکتا ہوں خود. तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग के हद तक मैं अपनी तरफ से शुरू कर सकता हूँ। तो एक दफा जब मैंने अपना शुरू कर दिया तो मैंने कहा फिर अब इसी तरह इसी को रखते हैं। बैंड्स के साथ कोलैबोरेशन मैं डेफिनेटली की है, जब भी परफॉर्मेंसेस किए हैं हमने अभी ह्यूस्टन के अंदर तो, लेकिन वो भी मैंने अब ये है कि मैं अब अकेला शुरू करता हूँ। और अब बल्कि अकेले के लिए मैंने क्या किया कि एक एक मशीन आती है जिसमें आप प्ले करो तो वो वापस रिपीट होती रहती है स्टेज के ऊपर ही, तो मैंने वो ले ली और उस पर फिर मैं अब गिटार के साथ उसी वक्त बजाते वक्त ही बीट बनाता हूँ, फिर ऊपर म्यूजिक प्ले करता हूँ, फिर ऊपर आवाज और गा गा के, तो वो पूरा एक वन मैन बैंड टाइप बन गया है।
तो और ये यहाँ के रेडियो शोज में भी आपको फिर बुलाया जाता है, वहाँ भी परफॉर्म करते हैं?
बिल्कुल, अभी बल्कि मैं पिछले हफ्ते ही संडे को आई वाज ऑन अनदर रेडियो, तो यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है विच एंड हमारे यहाँ पे सारे माशाल्लाह पाकिस्तान के जो लोग देखते हैं कि यू नो एक बंदे को हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी सपोर्टिव कम्युनिटी है ह्यूस्टन के अंदर, तो मुझे बहुत सारे मौके मिलते हैं परफॉर्म करने के, बहुत सारे इन्विटेशन भी मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और क्योंकि शौक है मेरा परफॉर्मेंस, मेरा लाइक रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है परफॉर्म करते हुए।
अच्छा, और ये जो आपका शौक है, जाहिर है कि ये एक तरह से खुद को प्रोमिनेंट करने का भी एक जज्बा होता है, और हम जब आपके वो वीडियो पोस्ट करेंगे आपकी वो जो शो आपने कबूल है का सारा प्रोडक्शन, आप उसमें प्रोडक्शन भी आपने की थी अपने उस शो की?
प्रोडक्शन तो बेसिकली प्रेजिडेंट का काम शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ ही होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हेल्प मैंने बहुत बड़ी अच्छी टीम थी। जैसे डांसिंग का था कि मैंने डांस खुद किया था, तो उसके बीच में मैंने मतलब, लेकिन हमारे पास कोरियोग्राफर मतलब जो लड़कियां करती हैं वैसे लड़कियां या लड़के बहुत अच्छे जो डांस करते हैं, उन लोगों ने बच्चे स्टूडेंट्स थे उनने मिलकर डांस जैसे बनाया था, लेकिन मैंने ऑफकोर्स साथ हेल्प की थी, मैं डांस भी करता हूँ तो मैंने उनमें हेल्प की थी, प्लस सिंगिंग के अंदर ऑफकोर्स फिर मैंने साथ और प्लस हेल्प थी हर चीज के अंदर, लेकिन एक ऑफकोर्स जो शो का विजन था वो मेरा और मेरी टीम के साथ डिस्कस हुआ, वो एक हमारा बना हुआ विजन था जो हम लोगों ने एट द एंड उसे प्रेजेंट किया था, तो ऑफ कोर्स जब लोग वीडियो देखेंगे बहुत अच्छा शो हुआ था हमारा माशाल्लाह,
और हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो लोग देखेंगे तो बाकी वो इतराफ करेंगे कि अरीफ खान एक अच्छे होस्ट भी हैं, और बड़े एतमाद के साथ इन्होंने 3 घंटे का शो जो था उसकी होस्टिंग की थी, और कोई घपला बीच में नहीं हुआ और वो बड़ा स्मूथ गया शो। तो आपको हम उसके लिंक ज़रूर देंगे, हमारे फेसबुक पेजेस पर देखिएगा प्रोग्राम के बाद, तो आप इंजॉय करेंगे उसको। अच्छा, आप खास तौर पर कौन से गुलकारों से इम्प्रेस्ड हैं जिसके नगमे आप गा रहे हैं?
मैं जब कराची में था ना तो मेरी एक पता नहीं ज्यादा मैं इंग्लिश गाने करता था, तो और मेरी हमेशा से आदत नहीं थी कि मैं यू नो हेडफोन्स या मोबाइल के अंदर गाने डाल के वक्त सुनूं, तो जो मैं रेडियो पे सुनता था तो वही मुझे मतलब यू नो दिमाग में रह जाते थे, उनकी ट्यून्स रह जाती थी, तो इंग्लिश में तो बहुत है, लेकिन उर्दू का मैंने बहुत ज्यादा जो फोकस शुरू किया वो मैंने आके ह्यूस्टन के अंदर शुरू किया, जब मुझे एक सपोर्ट भी मिली और मुझे लोगों ने इनकरेज भी किया कि उर्दू के भी करो, तो मैंने यहाँ पे उर्दू आके फिर ज्यादा शुरू किया। उर्दू में आजकल जैसे कोक स्टूडियो के जो गाने आ रहे हैं उनका म्यूजिक के हिसाब से और हर तरीके के हिसाब से बहुत अच्छे, लेकिन सिंगर्स ऑफकोर्स हमारे जो बैंड के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रिंग्स का जो बैंड है उसके गाने सारे, और मुझे डेफिनेटली उनके गानों को मैं देख के अपने भी मतलब यू नो एक इंस्पिरेशन लेता हूँ। थिंग्स के अलावा नूरी एक बैंड है, तो नूरी के गाने, और अगर वैसे अकेले बैंड में देखे जाए तो आतिफ असलम भी एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान से सिंगर जो निकले था, लेकिन मेरा ये है कि मैं ज्यादा मेरा यूज ही होता है कि मुझे अगर कोई एक गाना अच्छा है किसी भी एक सिंगर का निकला है तो वो क्योंकि मुझे पहले से शौक था अंग्रेजी करने का, तो मैं अंग्रेजी गाने करता था, फिर जब मैंने उर्दू शुरू किया तो मैंने फिर कहा कि यू नो गाने मतलब एक अब मैं अमेरिका के अंदर हूँ तो मैं दोनों ऑडियंस को उनको वीडियोस ऐसी बनाऊं जो दोनों देख सकें, तो इसलिए फिर मैंने मैशअप्स बनाना शुरू किया, जो कि बेसिकली वो होता यह है कि आप मतलब एक ही गाना है मेरा वो अगर आप सुने कवर है कवर के कहते हैं उसे, तो वो लेकिन उसमें गाने दो हैं या तीन है, और वो दो तीन जो गाने हैं वो पहले मैं इंग्लिश वाला कोई एक और गाना होगा और फिर वो एकदम ट्रांजिशन कर जाएगा उर्दू गाने में और उर्दू से ट्रांजिशन कर जाएगा इंग्लिश गाने में, तो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं जिसमें आपको पता नहीं लगता कि गाना चेंज हुआ है अगर जैसे आपको पता।
लेकिन उनका थीम वही होता है, थीम वही होता है या ट्रांसलेशन होती है उस गाने की? वो
नहीं, ट्रांसलेशन ही होती है, डिफरेंट वो गाना चेंज होता है। तो कुछ गानों में ट्रांसलेशन भी की जाती है. मैंने अभी तक आई थिंक वैसे लाइव मैंने किए हैं तो कुछ किए हैं, लेकिन फेसबुक में मेरे ट्रांसलेशन टाइप वाले गाने नहीं है जिसमें मैं अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करके उर्दू में गाऊं. बट वो भी एक है प्लान कि मैं ऐसे भी गाने करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वही बात है कि मैं अमेरिका के अंदर एक म्यूजिशियन हूं, तो मुझे दोनों तरह की ऑडियंस को
कैप्चर करना है. कैप्चर करना है बिल्कुल. तो हमारे पास एक दो आपके नगमे मैंने डाउनलोड किए हैं, वो उनकी झलक सुनवा देते हैं. एक तो माही वे है जो आपने गाया, उसकी एक झलक इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर पेश कर रही है.
गल्ला मैनु लुक लुक देड़ माही वे तेरे दिला दिया गल्ला मैनु लुक लुक देड़ हवा
आरिफ खान. कुछ खास बात इस नगमे की, इसको आप कवर सॉन्ग कहते हैं.
हाँ जी, ये अगर आपने नोट किया हो तो एंड में एक गाने से दूसरे गाने में ट्रांजिशन किया था. पहले वाला गाना माही वे था और दूसरा वाला गाना अनजाने. तो इस तरह तो कुछ लोगों ने जिन्हें नहीं सुना था गाने, तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि ये ट्रांजिशन हुआ है.
मैं तो खुद जब इसको डाउनलोड कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन सा वाला गाना गा रहे हैं और मैं इसको टाइटल क्या दूं जब लोगों को तक पेश करूं.
यही मैशअप जो मैं कह रहा था, तो उसमें यही होता है कि वो ट्रांजिशन एक गाने से दूसरे में उसी तरह म्यूजिक में कर जाता है. तो इस गाने की लेकिन बहुत मजे की स्टोरी है. इस गाने को गाना तो ऑफकोर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इसकी वीडियो की मजे की स्टोरी है कि मुझे मेरे पास कोई था नहीं साथ हेल्प करने के लिए वीडियो बनाने के लिए. तो मैंने फिर और प्लस मेरे पास चीजें भी नहीं थी, तो मैंने लाइक एक स्टैंड लिया और उस पर टेप से मैंने अपना मोबाइल लगाया. और अगर लोग फेसबुक पे जाके देखें तो वो मोबाइल मैंने लगाया और फिर वो जगह जगह पे फेरा हूँ. उसके अंदर मैं स्विमिंग पूल के अंदर गिरता हूँ और वो सब कुछ. तो वो मैंने फिर ऊपर बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर वो शॉपर लगा के उसको बारिश से बचाया. तो इस तरह कर करके मैंने वो वीडियो बनाई पूरी. तो इस तरह वो बस एक फनी स्टोरी है, ये शुरू शुरू के मेरे जो मैंने बनाए हैं कवर.
तो वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं शायद, उसका असर था.
एग्जैक्टली. तो कोई ना कोई किस तरीका निकाल लिया.
बिल्कुल बिल्कुल. तो लीजिए एक और झलक इनके आरिफ खान के नगमे की जो इन्होंने गाया है, लेकिन गुलूकार कौन है ये खुद बताएंगे.
Yeah.
जी, तो अरिफ खान जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलिए ताकि हम तीसरा नगमा भी पेश करें।
जी जी बिल्कुल, ये गाना ये पहला जो गाना था हमदम सोनी और था एआर रहमान का, बल्कि ये इंडियन गाना है, और दूसरा जो गाना था वो इंग्लिश सॉन्ग था जॉन मेयर का। बस इसकी मजे की स्टोरी ये है कि बीच में आई थिंक आप लोग नजर सुनाई दिया होगा कि मैं हंसा था। तो ये मैं एक्चुअली ये मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं पाकिस्तान वापस गया था एक साल के बाद।
अच्छा,
और वो जो मैंने बताया था जिस बंदे के साथ मैंने बैंड शुरू किया था, तो उसके साथ फिर हम लोगों ने अब इतना बिजी हो गया था वो भी तो मिल नहीं सकता था, लेकिन एक दिन हमने बैठ के तीन चार एक साथ लगातार रिकॉर्ड किया था।
अच्छा,
तो बीच में उसकी कॉल आ गई थी इसलिए हंस रहे थे। तो हर गाने की कोई ना कोई एक होती है मेमोरी।
बिल्कुल, तो इस गाने की क्या मेमोरी है ये पहले सुने और फिर बताइए। खान, इसकी जल्दी से मेमोरी क्या है?
जी, इसकी मेमोरी उसी बंदे के साथ है, मुस्तफा मकबी मेरे दोस्त का नाम है जो गिटारिस्ट था। और ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्काइप पे बनाई हुई है वीडियो। रिकॉर्डिंग कोर्स मैंने भी की थी, लेकिन वीडियो के अंदर हमने ये दिखाया कि वो गाने के लिरिक्स नहीं है कि मिल गया वो बिछड़ा यार। तो हम दोनों की मतलब वो ये थी कि तुम ऑल्दो हम लोग पूरे सात समंदर पार है, लेकिन गाना तब भी हम लोग साथ रिकॉर्ड करेंगे,
साथ रिकॉर्ड
करेंगे।
तो बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपका ओरिजिनल सॉन्ग चलवाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं एक गिटारिस्ट, एक गुलूकार, नगमा निगार और कलन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन या PSA के सदर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्टूडेंट अरिफ खान। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरिफ खान अपनी तालीम और PSA की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ इंजीनियरिंग की एक कंपनी जियोमेट्रिक से भी जुजवकती वाबस्तगी रखते हैं। और इन सब के साथ साथ अरिफ खान موسیقی کے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور گلوکاری، نغمہ نگاری، ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو پروڈکشن کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں۔ ہمارے مہمان کی تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ جی واہ عارف خان، یہ نغمہ آپ نے خود لکھا اور خود پروڈیوس کیا؟
جی بالکل، یہ میرا اپنا اوریجنل تھا۔
اچھا، اور یہ بھی آپ نے حال ہی میں لکھا، آپ کا ایک اور نغمہ بھی ہے، اس کا ٹائٹل ہے وہ لمحہ۔ تو لیجئے ایک اور جھلک ان کے عارف خان کے نغمے کی۔
مشکل میں وقت رک جائے، تیری آنکھوں میں یہ نمی کچھ سمجھ نہ آئے، کیوں میری ہو کے مجھ سے ہی دور جانے لگی ہے، تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی الٹ گئی ہے، کرنی ہے التجا تجھ سے، بھولو نہ
واہ عارف خان، یہ نغمہ آپ نے خود لکھا اور خود پروڈیوس کیا؟
جی بالکل.
آپ یہ بتائیے کہ آپ اور کتنے نغمے اب تک لکھ کے رکھ چکے ہیں جو آپ آئندہ گانے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں پروڈیوس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
بہت سارے ہو چکے ہیں، مطلب آئی تھنک میرے پاس ایک البم تو ریڈی ہے، لیکن میں نے شروع میں جس طرح بتایا تھا میں نے انگلش زیادہ لکھے تھے، تو انگلش میرے پاس ہے ایک پوری البم جتنے ریڈی ہیں سانگ، لیکن اردو کے اندر میں نے ابھی شروع کیے ہیں، تو میرے پاس تقریباً 2-3 اردو کے سانگس ہیں بٹ تو لکھ، لیکن اٹس آن گوئنگ پروسیس اینڈ
یہ جاری رہے گا. تو آپ چاہیں تو اپنے فیس بک کا لنک بتا سکتے ہیں ہمارے سننے والوں کو، جہاں لوگ جا کر آپ کے نغموں کو جو آپ نے بڑی محنت سے میکینیکل انجینئر کے طور پر ریکارڈ کیے ہیں، خود ہی سارا کام کیا ہے، تو لنک بتا دیجیے.
جی بالکل، میں بہت آنرڈ اف ایوری ون وڈ گو ٹو فیس بک اینڈ facebook.com/عریب خان آفیشیل، تو اس پہ جا کے آپ پیج لائک کر سکتے ہیں، میں ویڈیوز پوسٹ کرتا رہتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز پوسٹ کروں، اور اب میں آف کورس زیادہ سے زیادہ اردو کورز کیا کروں گا تو اور اوریجنل بھی لگایا کروں گا.
اور اگر کوئی اسٹوڈیو والا چاہے کہ آپ کو یہ سہولت فراہم کرے کہ آپ کو آپ کے نغمے ریکارڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے، تو اس کا شکریہ ادا کریں گے اس وقت آپ؟
جی بالکل بالکل کریں گے، اینڈ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو کولیبریٹ ود ادر میوزیشنز ٹو، اینڈ اگر اس طرح کے پروڈیوسرز یا اسٹوڈیو کے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی وہاں پہ ہوگا اور کانٹیکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں.
تو بہت شکریہ عریب خان، ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. ہماری دعا کہ آپ بہت جلد جو آپ کا موسیقی کا پیشن ہے اس کی تکمیل کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے اور اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان کون تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان تھے ایک گٹارسٹ، ایک گلوکار، نغمہ نگار اور کلن کالج آف انجینئرنگ یونیورسٹی ہیوسٹن میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یا پی ایس اے کے صدر اور میکینیکل انجینئرنگ کے ایک انٹرنیشنل انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ عریب خان. کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والے عریب خان اپنی تعلیم اور پی ایس اے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی ایک کمپنی جیومیٹرک سے بھی جز وقتی وابستگی رکھتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ عریب خان موسیقی کے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور گلوکاری، نغمہ نگاری، ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو پروڈکشن کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں. ہمارے مہمان کی تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی تھی. You are on my mind.